ಪ್ರಣಮಿಯ ಜಿಣೆಂದ ವರ್ಣೈಮಿ ಚಂದ ಮಕಲಂಕಂ ಗುಣರಯಣಭೂಷಣುದಯಂ ಜೀವಸ್ಸ ಪರುವಣಂ ವೋಚ್ಛಂ. ಜೀವ ದ್ರವ್ಯ ಕಿ 20 ಪ್ರರೂಪಣಾಓಂ ಕೋ ಬತಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೆ ಗೋಮಠ ಸಾರ್ ಜೀವ ಕಾಂಡ ನಾಮ ಕೆ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ ಹೈ. ಉಸ್ಮೇ ಸೆ 20 ಪ್ರರೂಪಣಾಓಂ ಮೇ ಸೆ 12ವೀ ಪ್ರರೂಪಣಾ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೈ. ಇಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಣಾ. ದೇಖೋ, ಜ್ಞಾನ ಸಬ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ. ಕೋಯಿ ಭೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಸಾ ನಹೀ ಹೈ, ಏಕ್ ಇಂದ್ರಿ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಕೆ 5 ಇಂದ್ರಿ ತಕ್ಕೆ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಜೀವ ಹೈ ಸಬ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಜ್ಞಾನ ನಾಮ ಕಿ ಚೀಜ್ ಹೈ. ಔರ್ ಜಹಾಂ ಜ್ಞಾನ ನಹೀ ಹೋತಾ ವಹ ಅಚೇತನ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಅಜೀವ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಕಲ್ ಕಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಆಪ್ನೆ ಜಾನಾ ಕಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಗೋದಿಯಾ ಲಬ್ಧ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಜೀವ ಉಸ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋನೆ ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸಮಯ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಜಘನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸಮಝೆ ನಾ, ನಿಚ್ಚುಕ್ ಘಾಡಂ ನಿರಾವರಣಂ, ಜೋ ನಿತ್ಯ ಹಿ ಉದ್ಘಾಟಿಕ ರಹತಾ ಹೈ, ನಿರಾವರಣ ರಹತಾ ಹೈ, ಯೇ ಸಬ್ಸೆ ಜಘನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಸೆ ಕಮ್ ಜ್ಞಾನ ಕಿಸಿ ಕೋ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ಸಮಾಪ್ತ ಭಿ ನಹೀ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜೋ ಜೀವಧಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಆತ್ಮಾ ಕಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹಿ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ ಯದಿ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ನಹೀ ಲೇಂಗೆ. ಸಮಝಿ ತ್ರಿಶ್ಲಾ, ತುಮ್ನೆ ತೋ ಜೀವ ಕಾಂಡ ಕೋ ಪಢಾ ಹೈ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿ ಹೈ, ತೋ ಉಸ್ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ಜಾನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜಾನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಣಾ ಕಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕರೇ. ಕ್ಯೋಂಕಿ 750 ಗಾಥಾಓ ಮೇ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವ್ ನೆ ಉಸ್ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ, ಔರ್ ಪೂಜ್ಯಗಣ್ಯ ಜ್ಞಾನಮತಿ ಮಾತಾ ಇನ್ನೆ ಹಮೇ ಕೇವಲ 177 ಗಾಥಾಓ ಕಾ ಸಂಕಲನ ಕರ್ಕೆ ಜೀವ ಕಾಂಡ ಸಾರ ನಾಮ ಕಾ ಯೇ ಗ್ರಂಥ ಜೋ ದಿಯಾ, ಉತ್ನಾ ಭಿ ಯದಿ ಹಮ್ನೆ ಹೃದಯಂಗಮ ಕರ್ ಲಿಯಾ, ಜಾನ್ ಲಿಯಾ, ತೋ ಸಮಝೋ ಅಪ್ನಾ ತೋ ಬೇಡಾ ಪಾರ್ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ. ತೋ ಕಲ್ ಆಪ್ನೆ ಜಾನಾ ज्ञान के बारे में, यानी ज्ञान सामान्य से ज्ञान है जो प्रत्येक आत्मा में होता है. सामान्य से ज्ञान के 8 भेद किए हैं, कुमति कुशुत कुअवधि ये 3 मिथ्या ज्ञान है और 5 सम्यक ज्ञान है, मति शुत अवधि मना पर्यय और केवल ज्ञान. तीनों मिथ्या ज्ञानों के बारे में जानकारी की जो मिथ्या दृष्टियों को होते हैं, और मति और शुद्ध ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है, उन सम्यक ज्ञानों में शुद्ध ज्ञान की बात को जाना कि पर्याय ज्ञान लब्ध पर्याप्तक जीव के होता है और सबसे छोटा ज्ञान उनके अंदर नित्युत घाटित निरावरण ज्ञान होता है. और वर्तमान में जितने लोगों को, हम सबको जो भी ज्ञान है, वह अक्षर अक्षर समास नाम का ज्ञान है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के 20 भेद किए हैं, उनमें से तीसरे और चौथे नंबर के भेद में आता है अक्षर ज्ञान, अक्षर समास ज्ञान. ये दो ज्ञान ही आज के पंचेंद्रीय जीवों को, मनुष्यों को है. इसलिए अपने ज्ञान के बारे में जानकर उसे जितना बने वृद्धिंगत करना चाहिए. इनकी डिटेल्स तत्वार्थ राजवार्थिक सर्वार्थ सिद्धि और षट खंडागम आदि ग्रंथों में बहुत विस्तृत कथन है. उतना कथन तो यहां मैं नहीं कर रही हूं, आपको जानने के लिए यही पर्याप्त है. आगे हम चलते हैं गाथा नंबर 104 पर. उसमें कहा है 11 अंगों के नाम और उनके पदों की संख्या. आयारे सुदड़े,
आयारे सुदड़े,
ठाणे समवाय नाम गे अंगे,
ठाणे समवाय नाम गे गंगे
तत्तो विखा पन्नती नाहस धम कहा
तत्तो विखा पन्नती नाहस धम कहा।
सामूहिक गाथा पढ़िएगा। आया रे सुदड़े ठाणे समवाय नाम गे अंगे तत्तो विखा पन्नती नाहस धम कहा। तो वासे अज्जयणे अंतरेणुत्तरो ववाददसे
अंतरेणुत्तरो ववाददसे
पन्नाणं वायरणे
पन्नाणं वायरणे
विवाय सुत्तेय पद संखा
विवाय सुत्तेय पद संखा।
सामूहिक गाथा पढ़िए।
तो वासे अज्जयणे अन्तरेणुत्तरोवाददसे पन्नाणं वायरणे विवाय सुत्तेय पद संखा।
आचार्य सूत्रकृते स्थाने समवाय नाम के अंगे ततो व्याख्या प्रज्ञप्तौ नाथस्य धर्मकथायां तथा उपासकाध्ययने अन्तकृते अनुत्तरोपपाददशे प्रश्नानां व्याकरणे विपाक सूत्रे च पद संख्या। तो आपको इस चीज को जानने से पहले तत्वार्थ सूत्र के सूत्र नंबर 20 का ध्यान रखना है, जो प्रथम अध्याय का सूत्र है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो सर्वप्रथम उसके दो भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, और उसके अनेक भेद हैं, यानी अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। जो द्वादशांग रूप ज्ञान कहा गया है वह अंग प्रविष्ट के भेद रूप जानना चाहिए। तो अंग प्रविष्ट के 11 अंग यानी 12वें अंग में 14 भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से 11 अंग के नाम बताए जा रहे हैं। आचारांग यानी आयारे सुदड़े माने आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, धर्मकथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग और विपाक सूत्रांग। इन 11 अंगों के नाम से द्वादशांग को जो जाना जाता है, तो एकांतशांग भ्रजाता सारिकापि सुलोचना, इन 11 अंगों की पाठी आरिका सुलोचना गणिनी माता हुई है और उनको था। और आज अंगों का पूर्वों का ज्ञान किसी को भी नहीं है, अंग के अंश का ज्ञान हो सकता है, उसी का आश्रय लेकर हम ये मन में जान रहे हैं, भावना करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि ज्ञानमती माता जी को भी अंग के अंश का ज्ञान मिला, तभी उन्होंने षटखंडागम के 6841 सूत्रों पर 3200 प्रश्नों की सिद्धांत चिंतामणि नाम की टीका, संस्कृत टीका लिखी है, जिसमें आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के सूत्रों का पूरा मर्म उन्होंने टीका के अंदर अनेक ग्रंथों का आधार लेकर के किया है। ये वर्तमान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब 8वीं शताब्दी के अंदर श्री वीर सेनाचार्य ने धवला नाम की टीका लिखी पुष्पदंत भूतबली के सूत्रों पर, वह धवला टीका वर्तमान में है लेकिन कठिन है, और ये सिद्धांत चिंतामणि टीका आज 1200 साल के बाद किसी ने यदि लिखने की हिम्मत की है, साहस किया है, तो ज्ञानमती माता जी ने। इसलिए इन्हें सिद्धांत चक्रेश्वरी के नाम से भी हम सब जानते हैं। अभी पूज्य ज्ञानमती माता जी का जो आरिका दीक्षा दिवस आ रहा है, वैशाख कृष्णा द्वितीया 25 अप्रैल को, उसी दिन इन्होंने सन 2007 में उस टीका को 11.5 वर्षों में लिख करके परिपूर्ण किया हस्तनापुर के अतिशयकारी कमल मंदिर में भगवान महावीर के समक्ष। तो 11 अंग की बात, जो नाम कहे गए उन नामों के कथन में ये विशेष बात हमने आपको बताई है। अब इसमें कहा
कि विवाह सुत्ते या पद संख्या विपाक सूत्र तक जो 11 अंग के नाम बताए हैं इनके पदों की संख्या क्रम से और आगे जो गोमट सार का पूरा बड़ा ग्रंथ है उसके अंदर डिटेल में दिया है, लेकिन 11 अंगों के पदों की संख्या का जोड़ यहाँ जो दिया गया 4,15,02,000 उन 11 अंगों के पदों का जोड़ होता है। तो इन पदों इतने इतने बड़े पद हैं, इसीलिए कहा गया कि अंग और पूर्व ना तो आज उपलब्ध हैं और ना द्वादशांग को कोई लिपिबद्ध कर सकता है। ये तो केवल गणधर के अंदर शक्ति रहती है कि वे भगवान की दिव्य ध्वनि को 11 अंग 14 पूर्व रूप जानते हैं, बल्कि जितना जानते हैं उतना वे कह नहीं सकते और जितना वे कह देते हैं उतना हमारे आचार्यों ने लिखा नहीं है, जितना लिखा गया है उतना उपलब्ध नहीं है और जितना उपलब्ध है उनमें से सरसों के बराबर ज्ञान आज हमको और आपको है। इसलिए ज्ञान को हमेशा वृद्धिंगत करने की कोशिश करें, ज्ञान का अभिमान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी जीव हमेशा विनम्र रहता है, वरना क्या है किसी का नाम तो विनयी हो जाता है विनय, लेकिन वे अविनय के प्रतीक बन जाते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान का या अपने किसी भी चीज का घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो ज्ञान भी उनका निरर्थक हो जाता है। यदि सच्चा ज्ञान है तो सच्चा ज्ञानी जो हमेशा विनम्र रहेगा। एक छोटा सा बच्चा भी कोई आता है ज्ञानमती माता के पास तो मैं देखती हूँ बाल विकास लेकर के उसे पढ़ाने लगती हैं। जब हमारी गृहस्थ अवस्था की छोटी बहन त्रिशला आई, कितने साल की थी तुम? 11 साल की, 10 साल की, और तब माता जी से कहा हम तो आपके मुख से ही पढ़ेंगे, तो माता जी बोली कि हम तो जो मुनियों को आरिकाओं को सबको पढ़ाते हैं उसी में तुम बैठ जाओ। इसलिए तब उसमें बैठ करके गोमट सार जीव कांड वगैरह ही कर्म कांड पढ़ा। मैंने भी स्वयं आकर के सन 1969 में पूज्य माता जी के मुख से गोमट सार जीव कांड की जो 34 गाथाएं याद की, आज वो मेरे भी वैराग्य और ज्ञान की नींव बन गए। तो भव्यात्माओं, इस गोमट सार के अंदर मैंने आपको आज 2 गाथाओं के माध्यम से 104 और 105 नंबर की गाथाओं के माध्यम से 11 अंगों के नाम बताए और 11 अंगों के पदों का जोड़ ये जरूर जरूर याद रखना कि 4,15,02,000 इनका जोड़ है और इसका विस्तृत संख्या अलग अलग सब अंगों की जाननी है तो उसको जो है आपको आगे के लिए पढ़ना पड़ेगा। सार रूप में जानना है कि जो अंग बाई और अंग प्रविष्ट हैं, अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, अंग बाई के अनेक भेद होते हैं। तो तत्वार्थ राजवार्तिक के अंदर कहा है कि गणधर देव के शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा अल्पायु बुद्धि बल वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ जो हैं अंग बाह्य हैं। समझ गए? अंगों की 11 अंगों के आधार से यानी अंग प्रविष्ट कोई आधार बना करके जो संक्षिप्त ग्रंथ रचे गए वे अंग बाह्य हैं। कालिक उत्कालिक आदि के भेद से अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। तो स्वाध्याय काल में यानी कि 3 समय की सामायिक, 2 समय के प्रतिक्रमण, इनकी समय को छोड़कर जो काल में सुकाल में स्वाध्याय किया जाता है उनके पठन पाठन का जो नियम है उसको कालिक कहते हैं और जिनके पठन पाठन का कोई नियत समय नहीं होता वे उत्कालिक कहे जाते हैं। उत्तराध्ययन आदि अंग बाह्य ग्रंथ हैं, तो जैसे पुराण आदि ग्रंथ कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ जो है षटखंडागम सूत्र ग्रंथ आदि विशिष्ट ग्रंथ धवल जय धवल महाधवल आदि इन ग्रंथों को काल में ही यानी समय से ही पढ़ने का निर्देश दिया गया है। तो हमने अंग प्रविष्ट और अंग बाई के बारे में जाना और ये श्रद्धा करना है कि वर्तमान में जो 4 अनियोगों में निबद्ध जिनवाणी है तो ये अंग बाई के ही अंश है, क्योंकि कहा कि अंगों के आधार से ही जो संक्षिप्त रुचि शिष्यों के लिए ग्रंथ रचे जाते हैं वे अंग बाह्य ग्रंथ है। आज के ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, कम से कम चारों अनुयोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय एक बार, दो दो चार चार ग्रंथ एक एक अनुयोग के जरूर पढ़ना चाहिए। प्रथमानुयोग ग्रंथ भी वे निरर्थक नहीं होते हैं, बल्कि प्रथमानुयोग ग्रंथों का स्वाध्याय हमारे ज्ञान की नींव का बेस होता है। ज्ञान का बेस है, ज्ञान की नींव है, और नींव जिसकी पक्की होती है उसका वैराग्य कभी भी डिग नहीं सकता। आप देखो कोई कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अंत समय में संलेखना के समय में समाधि मरण पढ़ा जाता है, तो समाधि मरण में क्या पढ़ते हैं, सब प्रथमानुयोग के ही महापुरुषों का बार बार कथन आता है। देखो गज मुनि के सिर ऊपर वज्र अग्नि जलवाई, तो वज्र कुमार मुनि का ध्यान जाता है कि देखो उन्होंने अग्नि का उपसर्ग सहन किया। 700 मुनियों के ऊपर सीता जी का और न जाने कितने महापुरुषों के नाम स्मरण कराए जाते हैं, तो क्या है, प्रथमानुयोगी तो है। यानी अंत में प्रथमानुयोगी अपने काम आता है, क्योंकि किसी की सहन शक्ति देख करके अपने अंदर भी सहन करने की सहिष्णुता की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी अनुयोग व्यर्थ नहीं है, बल्कि प्रथमानुयोग तो इतना अधिक सारभूत बताती हैं पूज्य माता जी। सुबह से मैं देखती हूँ 10-11 ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं, और जब रात में सोने लगती हैं तो प्रथमानुयोग सुनती हैं, और प्रथमानुयोग सुनते सुनते ही उनका शयन प्रारंभ होता है, विश्राम। और फिर रात में बताती हैं कि हमने अच्छे अच्छे सपने देखे। तो महानुभाव आप सब भी स्वाध्याय करना, इस ज्ञान की बात को सुनकर अच्छा स्वाध्याय करना। एक बार जीवन के अंदर पद्म पुराण और एक बार आदि पुराण महापुराण जिसे कहते हैं उसका स्वाध्याय जरूर जरूर कीजिएगा।